पाठ 27 अध्याय 19।
हमने पिछली बार लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 से शुरुआत की थी। यह अध्याय उपासक की पवित्रता पर केंद्रित है। आइए अध्याय का कुछ भाग पुनः पढ़ें।
लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 1 से 18 पढ़ें।
हम देखते हैं कि इस अध्याय में 10 आज्ञाओं में से 6 को सीधे संबोधित किया गया है और शब्द उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बताते हैं जिन्हें इज़राइल के परमेश्वर में प्रत्येक विश्वासी को लेना है। हमें पद 2 में तुरंत बताया गया है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं याहवे पवित्र हूं, जबकि आधुनिक ईसाई धर्म में इस निर्देश को कुछ हद तक दिखावटी माना जाता है। अधिकांश भाग के लिए हमारे व्यक्तिगत पवित्र व्यवहार को कार्यों और कानूनवाद के कथित खतरे के कारण अलग रखा गया है। मुझे लगता है कि इस तरह के विकृत तर्क का कारण बनने वाली मूलभूत समस्या गलत धारणा से आती है कि यीशु ने तोरह को खत्म कर दिया और इसके साथ ही पवित्रता क्या है और एक विश्वासी के जीवन में यह कैसी दिखती है, इसकी कोई भी ठोस परिभाषा खत्म हो गई। ईश्वर के समान पवित्र होने के बारे में उस कथन का अर्थ यह है कि हमें ईश्वर का अनुकरण करना है जिसका स्वभाव ही पवित्रता है और उस तरह की पवित्रता हमारी नैतिक अखंडता में व्यक्त होती है जिसे बदले में हमारे व्यवहार और कार्यों में प्रकट होना चाहिए, न कि केवल हमारे इरादों या आंतरिक भावनाओं में। मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि हमारी मानवीय इच्छा का पूरा उद्देश्य नैतिक निर्णयों को व्यक्त करना और प्रकट करना है, लेकिन नैतिक क्या है और क्या नहीं, यह भेद करने के लिए हमें किस स्रोत से जानकारी लेनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील दुनिया के अनुसार वह स्रोत मानव हृदय और बुद्धि है। चर्च के अनुसार यह आस्था का सांप्रदायिक लेख और उससे जुड़े धार्मिक सिद्धांत है। ईश्वर के अनुसार यह उनके तोरह में प्रकट किए गए उनके कानून और आदेश हैं।
अतः पवित्रता एक आंतरिक स्थिति है जिसे व्यावहारिक मूल्य प्राप्त करने के लिए बाहरी रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। ईश्वर पवित्र ईश्वर नहीं है जो अपवित्र तरीके से व्यवहार करता है। इसलिए हमारे लिए यीशु के साथ अपने रिश्ते के कारण पवित्रता का दावा करना, लेकिन ऐसा व्यवहार करना मानो हमारे निर्णय और कार्य उस आंतरिक पवित्रता से अलग हैं, हमें सबसे बुरे तरीके से पाखंडी बनाता है। इसलिए हमें मसीहा के माध्यम से ईश्वर से एक उपहार के रूप में एक नया आवश्यक स्वभाव स्वीकार करना चाहिए जो एक प्रकार की पवित्रता उत्पन्न करता है जो हमारे नैतिक निर्णयों और हमारे व्यवहार को एक ऐसे प्रकार में बदल देता है जो सृष्टिकर्ता की नकल करता है और उसके साथ सामंजस्य रखता है।
पद 4 में इसराइलियों से कहा गया है कि वे मूर्तियों की ओर न मुरे। मूर्तियों की ओर न मुरे एक इब्रानी मुहावरा है। इसका मतलब है कि किसी को किसी चीज या व्यक्ति को न तो पुकारना चाहिए न ही उस पर भरोसा करना चाहिए। इस मामले में इसराइलियों को मदद के लिए किसी मूर्ति झूठे देवता की शक्ति को नहीं पुकारना चाहिए। इसके बाद 5वें और 6ठे पद में बलिदान की भेंटों के बारे में बताया गया है, लेकिन यह सामान्य रूप से बलिदानों की बात नहीं करता है, बल्कि यह विशेष रूप से जेवा शैलामिम श्रेणी के बलिदानों को संदर्भित करता है और निर्देश है कि इस तरह की भेंट को ठीक उसी तरह से चढ़ाया जाना चाहिए जैसा कि यहोवा ने इसे निर्धारित किया है और इसे पहले दिन ही खाया जाना चाहिए। सभी चीजें जो लेव्य व्यवस्था 7 में परिभाषित की गई हैं। हम यहां विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन कोई पूछ सकता है कि हमने जिन 5 अलग अलग श्रेणियों के बलिदानों का अध्ययन किया है उनमें से परमेश्वर ने शैलामिम बलिदानों को इसके उचित प्रोटोकॉल के उल्लंघन के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी देने के लिए क्यों चुना, क्योंकि यह कहता है कि जो इसे अनुचित तरीके से खाता है वह परमेश्वर द्वारा दोषी पाया जाएगा और दंड यह है कि उल्लंघनकर्ता को उसके लोगों से अलग कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उस व्यक्ति को या तो इज़राइल राष्ट्र से बहिष्कृत कर दिया जाएगा जिसमें ईश्वर से अलग होना भी शामिल है, या उसे मार दिया जाएगा। खैर, वास्तविकता यह है कि शैलामिम वर्ग की बलि मात्रा और आवृत्ति में अन्य सभी बलि से कहीं आगे होगी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि नियम के अनुसार जो उपासक शैलामिम बलि के लिए अपने जानवर की बलि चढ़ाता था वह क जब भी और जितनी बार चाहे बलि चढ़ा सकता था और खा उसे किसी भी अन्य प्रकार की बलि की तुलना में अपने और अपने परिवार के लिए मांस का सबसे बड़ा हिस्सा रखने का अधिकार था। अब काफी समय हो गया है जब से हमने बलिदान के इस पहलू पर सामान्य रूप से चर्चा की है, इसलिए चूंकि इसका उल्लेख पद 8 में किया गया है इसलिए मैं आपको इसकी याद दिलाना चाहता हूं। ध्यान दें कि बलि के मांस को अनुचित तरीके से खाने, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के लिए निर्धारित न किए गए हिस्से को लेना, कि समस्या यह है कि उपासक ने प्रभु के लिए पवित्र चीज को अपवित्र किया है। याद करें कि कई सप्ताह पहले हमने परमेश्वर की पवित्र संपत्ति के बारे में बात की थी। जो भी जानवर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए चुना जाता है उसका स्वामित्व आधिकारिक तौर पर किसी निश्चित समय पर परमेश्वर को हस्तांतरित कर दिया जाता है। आमतौर पर जब तंबू में जानवर के सिर पर हाथ रखे जाते हैं उस क्षण से वह बलि का जानवर अब परमेश्वर का हो जाता है, यह पवित्र संपत्ति बन जाता है। इसलिए परमेश्वर को सौंपे गए जानवर को अनुचित तरीके से खाना उसकी पवित्र संपत्ति का उल्लंघन करना है, और इससे ज्यादा गंभीर अपराध कोई और नहीं हो सकता जो एक इजरायली कर सकता है। इसलिए ऐसा करने के परिणाम स्वरूप अपने लोगों से अलग कर दिए जाने की कठोर सजा दी जाती है। आयत 9 और 10 में इसराइल के बीच रहने वाले गरीबों और परदेशियों के लिए प्रावधान करने के बारे में बताया गया है, लेकिन ध्यान दें कि इन दो आज्ञाओं का कई सालों तक कोई असर नहीं हुआ। जिस समय ये आदेश दिए गए थे उस समय इसराइल 3 मिलियन लोगों का एक भटकता हुआ समुदाय था। वे निश्चित रूप से खेती नहीं करते थे और ये दो आदेश सीधे खेती के बारे में हैं, ऐसा कुछ जो वे लगभग 40 साल बीतने तक नहीं करेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो हम लैव व्यवस्था में जो अंश पर्श रहे हैं वे मूसा को माउंट सिनाई पर दिए गए थे इसराइल के मिस्र से भागने के 1 साल से भी कम समय बाद, और इनमें से कई आदेशों का इसराइलियों के लिए कोई अर्थ या सीधा कार्य नहीं होगा जब तक कि वे कनान के वादा किए गए देश पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते और इसे अपना नहीं बना लेते। बेशक इन इसराइलियों को इस समय यह नहीं पता था कि उनमें से अधिकांश कभी वह दिन नहीं देखेंगे जब उनके पास अपने अंगूर के बाग और खेत होंगे। जहां तक उन्हें पता था कि वे शायद अपने अंतिम गंतव्य से कुछ हफ्ते दूर थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहा है, क्योंकि भले ही इन कृषि नियमों का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग कई वर्षों दूर था लेकिन वे जिन सिद्धांतों पर आधारित थे उनका तुरंत पालन किया जा सकता था। और मुख्य बात यह थी कि इजरायली समाज में जो लोग अपनी देखभाल करने में असमर्थ थे उन्हें दया दिखाई जानी थी और जीवित रहने का साधन प्रदान किया जाना था। सीधे तौर पर देखें तो पद 9 की चेतावनी कि अपने खेत के किनारे तक फसल न काटें का सीधा सा मतलब है कि जब खेत का मालिक अपने अनाज की कटाई करता है तो उसे खेत का एक निश्चित हिस्सा पूरी तरह से बिना काटे छोड़ देना होता है। इस प्रकार गरीब लोग इसे काट सकते हैं, इसे आमतौर पर बीनना कहते हैं, और भोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। खेत की फसलों से संबंधित आदेश का दूसरा भाग यह है कि खेत के मालिक को बीनने वाली फसल को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। चूंकि हम इस विषय के पुराने नियम और नए नियम दोनों में कई उदाहरण देखेंगे तो आइए इस अभ्यास को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ समय निकालें। गरीबों के लिए अनाज के 2 आवंटन है, पेयाह और लेकेट। प्याह का मतलब है कोना या किनारा। यह किसी के खेत का वह हिस्सा है जिसे पूरी तरह से बिना काटे छोड़ दिया जाता है। बेशक हर किसान ने जो स्वाभाविक सवाल पूछा होगा वह यह है कि मेरे खेत का कितना हिस्सा इसमें आता है। मिश्ना कहता है कि आम तौर पर बिना किसी अच्छे कारण के किसी व्यक्ति के खेत का 1/16 हिस्सा बिना काटे छोड़ दिया जाना चाहिए, लगभग 6 या 7%, और यह स्थानीय आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करेगा, जैसे कि कितने गरीब लोग हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है और फसल कितनी प्रचुर मात्रा में है। अगर फसल खराब होती है तो गरीबों के लिए अधिक प्रतिशत आवंटित करने की आवश्यकता हो सकती है, और इसलिए कि हम सही तस्वीर समझ सकें ये गरीबों पर निर्भर करता है कि वे आकर खुद ही अनाज काटें, इसे किसान द्वारा इकट्ठा करके उन्हें नहीं दिया जाता। गरीबों के लिए अनाज का दूसरा आवंटन लेकेट बीनने को संदर्भित करता है। बीनना फसल का वह हिस्सा है जो कटाई प्रक्रिया के सामान्य परिणाम के रूप में जमीन पर गिरता है। उन दिनों अनाज की कटाई इस तरह की जाती थी कि एक व्यक्ति एक ही झटके में एक हाथ में अनाज के डंठलों को पकड़ता था और दूसरे हाथ में दरांती से उन्हें जमीन पर से काट देता था। दरांती के हर वार के साथ कुछ डंठलों की छोटी संख्या कटाई करने वाले के हाथ से गिर जाती थी जबकि वह अपना काम कर रहा था। लेकेट के नियम के अनुसार किसानों को नीचे झुककर जमीन से गिरे हुए अनाज के डंठलों को उठाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें गरीबों के लिए बीनने के लिए छोड़ दिया जाना था। रूत की पुस्तक में इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अब अंगूर के बाग, जो कि इज़राइल की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा होंगे, को अनाज के खेतों की तरह ही संभाला जाना था। इसलिए अंगूर की कुछ मात्रा गरीबों के लिए भी अलग रखी जानी थी। परमेश्वर का आदेश है कि सभी फलों को बेलों से नहीं तोड़ा जाना चाहिए, बल्कि कुछ को गरीबों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अंगूर जमीन पर गिर गए थे उन्हें किसान द्वारा नहीं तोड़ा जाना था, उन्हें गरीबों के लिए छोड़ दिया जाना था। जिन अंगूरों को बिना तोड़े छोड़ दिया जाना था, जो अभी भी बेल से जुड़े हुए हैं, उन्हें ओलेलॉट कहा जाता है। और आम तौर पर ये वे अंगूर होते हैं जो पकने में धीमे होते हैं। इसलिए जब कटाई का समय आता है और अंगूर के गुच्छे तोड़े जाते हैं, तो जो अंगूर छोटे होते हैं और पूरी तरह से पके नहीं होते हैं, उन्हें कुछ समय और पकने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ये वे अंगूर हैं जिन्हें अंततः गरीबों द्वारा तोड़ा जाएगा। पेरेट इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है वे अंगूर जो जमीन पर गिर गए हों और उन्हें तब तक वहीं छोड़ दिया जाना चाहिए जब तक कि गरीब लोग उन्हें लेने न आ जाएं। अब वे गरीब और अजनबी कौन थे जो फसल कटने के बाद आए और खुद की मदद की? गरीब वे लोग थे जिनके पास खेत खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, या शायद वे ऐसे परिवार थे जिनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इसलिए कोई आय नहीं थी। शायद वे बीमार या लंगड़े थे और काम नहीं कर सकते थे। ये हताश लोग थे, आलसी लोग नहीं। ईश्वर और इसलिए इसराइलियों ने अपने समाज में किसी भी तरह की आलस्य को बर्दाश्त नहीं किया। परिभाषा के अनुसार जिन्हें गरीब के रूप में परिभाषित किया गया था वे इसराइली थे। इस तरह के दान में हिस्सा लेने की अनुमति वाले अन्य वर्ग के लोग अजनबी थे। इब्रानी में गेर, यहां गेर का अर्थ उन विदेशियों से नहीं है जो इसराइल का हिस्सा बन गया। यह मिस्रियों और अन्य लोगों की मिश्रित भीड़ को संदर्भित नहीं कर रहा है जो मिस्र छोड़ने के बाद इसराइल में शामिल हो गए, बल्कि ये गैर विदेशी व्यापारियों या व्यापारियों जैसे लोग हैं जो कुछ समय के लिए शहर में थे, या शायद ये कोई विदेशी भारे का सैनिक या कारीगर था जो काम की तलाश में आया था। सभी मामलों में इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से था जिसका या तो इसराइल का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं था, या जिसका इसराइल का हिस्सा बनने का स्वागत नहीं था। और यहोवा ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि वे इसराइल के बीच रहते हैं तो भी उन पर दया की जाएगी और उन्हें निर्वाह स्तर पर जीवित रहने का साधन दिया जाएगा। पद 11 में विषय गरीबों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी से नागरिक कानून में बदल जाता है। तत्काल विषय है तुम चोरी नहीं करोगे, जो निश्चित रूप से 8वीं आज्ञा का दोहराव है। मुझे संदेह है कि आप यह देखना शुरू कर रहे हैं कि लैव्य व्यवस्था 19 को अक्सर तोरह के भीतर एक तोरह के रूप में क्यों देखा जाता है, क्योंकि यह कई सिद्धांतों का वर्णन करता है और कुछ मामलों में उन पर व्याख्या करता है जो पहले से ही निर्गमन या लैव्य व्यवस्था के पहले के हिस्सों में निर्धारित किए गए हैं। और यही पद अप्रत्यक्ष रूप से 9वीं आज्ञा का भी उल्लेख करता है, तुम झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि यह कहता है कि किसी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धोखा नहीं करना चाहिए या अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। ईमानदार व्यवहार की यह अवधारणा वास्तव में उस समय और यहां तक कि वर्तमान में अधिकांश मध्य पूर्वी संस्कृतियों से बिल्कुल अलग है। झूठ बोलकर, धोखा देकर और प्रासंगिक जानकारी को छिपाकर किसी व्यापारिक सौदे का सर्वोत्तम लाभ उठाना अधिकांश अरब संस्कृतियों में एक सकारात्मक और सराहनीय बात मानी जाती है। इसे बुद्धिमानी और चालाकी के रूप में देखा जाता है। बेशक यह हर लेन देन को प्रकृति में प्रतिकूल बनाता है, जिससे एक विजेता और एक हारने वाला होना चाहिए। और कहीं आप यह ना सोचें कि मैं अरबों को निशाना बना रहा हूं, मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि दुनिया की कई संस्कृतियां बिल्कुल इसी तरह सोचती हैं। लेकिन यहोवा कहता है कि उसके अलग अलग लोगों को ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। अब चतुर होना, अपना होमवर्क करना, कठोर सौदेबाजी करना, यह एक अलग मामला है। यह देखने के लिए तलमूड का बहुत ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है कि निष्पक्ष व्यवहार और न्याय इब्रानी सोच और समाज के गिर बन गए। ऐसा लगता है कि पूरे इतिहास में निसंदेह ईश्वर द्वारा तोरा में निर्धारित सिद्धांतों के कारण इब्रानी लोगों के दिल में वंचितों के लिए भावना रही है। कुछ ऐसा मैं जोड़ सकता हूं जिसके लिए अमेरिका भी जाना जाता है, और यह एक ऐसा गुण है जिसे हमने अभी तक नहीं खोया है। आगे बढ़ते हुए पद 12 में हमें तीसरी आज्ञा दोहराई गई है कि ईश्वर के नाम का उपयोग करके झूठी शपथ न लें। समझें कि उन दिनों शपथ लेने का मतलब स्वतः ही किसी एक देवता या दूसरे का नाम लेना होता था। यदि आप किसी देवता का नाम नहीं लेते तो संभवतः इसे वैध शपथ भी नहीं माना जाता था। और यहोवा कहता है कि तुम कभी भी ऐसी शपथ लेते समय उसका नाम मत लो जिसे पूरा करना असंभव हो, या तुम जानते हो कि तुम्हारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। बहुत समय बाद यीशु हमें बताएंगे कि शपथ लेना ही बेहतर नहीं है, बस हाँ हाँ और ना ना कहो और इसे यहीं छोड़ दो। इसके अलावा जीवन और परिस्थितियां बदलती रहती हैं।
आज शपथ लेना कल असंभव साबित हो सकता है, भले ही आपकी कोई प्रत्यक्ष गलती ना हो या धोखा देने का कोई इरादा ना हो। याद रखें कि यहोवा हमारी लापरवाह शपथ या उसके नाम के इस्तेमाल को दादाजी की तरह आंख मारकर या सिर हिलाकर नहीं देखता।
पद 13 से पद की एक श्रृंखला शुरू होती है जो ईश्वर के निष्पक्षता, न्याय और सत्यनिष्ठा के विचार को अधिक सावधानी से परिभाषित करना शुरू करती है। मुझे एक बात पर जोर देना चाहिए जो हमें हमारे अध्ययन में बार बार दिखाई जा रही है, और मुझे डर है कि यह सही समय है कि हम इसे स्वीकार करें और अपने जीवन में इससे निपटें। हर एक मामला जिसे प्रभु एक नियम या कानून या आदेश के रूप में निर्धारित करता है, वह अच्छाई और धार्मिकता का अनावरण है। परिभाषा के अनुसार जो कुछ भी उन नियमों और अध्यादेशों के विपरीत है वह बुराई है। यह नैतिकता का वास्तविक अर्थ है। ईश्वर का हर अंतिम अध्यादेश ईश्वरीय रूप से परिभाषित नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हर बार जब हम अवज्ञा करते हैं तो यह एक अनैतिक कार्य और बुराई है। इन नियमों और आदेशों को अपने आधुनिक जीवन में कैसे लागू करें, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि हम सभी को सचमुच खेत खरीदना चाहिए और उसमें से कुछ काट कर गरीबों के लिए अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे समय और युग में, विशेष रूप से अमेरिका में, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बचे हुए हिस्से, बीच में बची हुई फसल, अक्सर वहीं परे रहते हैं और सर जाते हैं। फिर भी बीनने के नियम के पीछे का सिद्धांत स्पष्ट है और हमारे आधुनिक अमेरिकी समाज में इसे लागू करना आसान है। हमें हमेशा दान के लिए बजट बनाना चाहिए। अगर हमारे पास बड़ा और भरपूर खेत है तो हम देते हैं, अगर हमारे पास छोटा खेत है तो हम देते हैं, हालांकि अनुपात लगभग समान ही रहता है। फिर भी अगर हमें कठिन समय के कारण अधिक जरूरत दिखाई देती है तो हम और अधिक देते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे खेतों के आकार के अनुसार मात्राएं अलग अलग होंगी, हमारी आय और संपत्ति। लेकिन यहोवा ने हमें देने से रोकने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि हम सभी बिल गेट्स नहीं हैं, न ही इसीलिए कि हम एक नई और बेहतर कार्य चाहते हैं। लेकिन एक कार होने का मतलब है कि दान के लिए कोई जगह नहीं है। पद 13 में दो तरह के झूठे व्यवहार की बात की गई है, धोखाधड़ी और डकैती। इब्रानी में धोखाधड़ी को ओशेक कहा जाता है और डकैती को गेजेला कहा जाता है। बाइबल में डकैती को किसी से कुछ लेना के रूप में परिभाषित किया गया है जो पहले से ही उसका है। मेरे पास एक बकरी है, तुम मेरी बकरी को यह जानते हुए भी लेते हो कि यह मेरी है और तुम्हारी नहीं, और यह डकैती है। धोखाधड़ी का मतलब है किसी से कुछ छिपाना, जिसके लिए कानून कहता है कि वे हकदार हैं।
यह अभी आपके पास नहीं है या अभी आपके पास नहीं है, लेकिन सभी अधिकारों के अनुसार यह आपका होना चाहिए। इसे आपको देने के बजाय मैं इसे धोखे से या सत्ता की स्थिति से आपसे वापस ले लेता हूं। यह किसी चीज जैसे पैसे को संदर्भित कर सकता है जो किसी को देना है, और वास्तव में पद 13 के अंत में यही उदाहरण दिया गया है जब यह कहता है, मजदूर की मजदूरी सुबह तक तुम्हारे पास नहीं रहेगी। बाइबल में मजदूरी का मतलब काम करने के बदले मिलने वाले पैसे से ज्यादा है, इसमें मजदूरी भी शामिल है। इसलिए जब कोई मजदूरी रोक लेता है तो इसका मतलब है कि काम करने वाले व्यक्ति ने अपने प्रयास और अपने प्रयास के लिए मुआवजा दोनों खो दिए हैं। सख्त अर्थों में सुबह तक मजदूरी न रोकने का यह आदेश अगले दिन तक किसी मजदूर की मजदूरी न रोकने का मतलब है। उस युग में जो व्यक्ति उस पैसे को कमाता था वह संभवतः उस दिन के लिए अपने परिवार के लिए भोजन खरीदने के लिए तुरंत इसका इस्तेमाल करता था। रात भर भी पैसे रोके रखने का मतलब था कि लोग भूखे सो जाते थे। यह परमेश्वर के दृष्टिकोण में अनुचित और अन्यायपूर्ण था। सामान्य और प्रथागत तरीका, इब्रानी समाज में अपेक्षित तरीका और संभवतः अधिकांश अन्य में भी यह था कि एक दिहाड़ी मजदूर को कार्य दिवस के अंत में तुरंत भुगतान किया जाए। इसलिए खेत के मालिक द्वारा एक हार्वेस्टर की मजदूरी रात भर रोके रखना, परमेश्वर इसे धोखाधड़ी ओशेक कहता है। अब अगला आदेश, बहरे का अपमान न करना, बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यहां विचार यह है कि चूंकि वह व्यक्ति आपको सुन नहीं सकता तो आप दिखावा कर सकते हैं कि आप उससे कुछ अच्छा कह रहे हैं, जबकि वास्तव में आप उसका अपमान कर रहे हैं। आप उसके सामने मुस्कुरा सकते हैं लेकिन उसके बारे में भयानक बातें कह सकते हैं, तो यह झूठ और अन्याय दोनों है।
बेशक यह बुरी प्रथा अंधे के सामने ठोकर का पत्थर रखने के समान ही है। इस आदेश को पूरी तरह से शाब्दिक रूप से लिया जा सकता है और यह सही भी हो सकता है, लेकिन बाद में इस मामले पर यहूदी विचार ने इन दोनों नियमों को सामान्य व्यवहार से संबंधित बना दिया। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की कमजोरी का फायदा उठाना, जिसे एक तरह का अंधापन या बहरापन माना जा सकता है। लैव्य व्यवस्था 19:14 में इस आदेश का उल्लंघन माना गया है। यह सिद्धांत कम बुद्धि वाले व्यक्ति पर भी लागू होता था और परिणाम स्वरूप कोई ज्यादा समझदार या ज्यादा शिक्षित व्यक्ति उसे आसानी से गुमराह कर सकता था, और यह इस चेतावनी के साथ समाप्त होता है कि तुम्हें अपने परमेश्वर का भय मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह बहरा व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि आपने उसका अपमान किया है, या वह अंधा व्यक्ति यह नहीं जानता कि आपने उसके रास्ते में वह वस्तु इसलिए रखी है ताकि आप उसे ठोकर खाते हुए देख सकें, लेकिन यहोवा सब कुछ देखता है और तुम उसकी दृष्टि से या शक्तिहीन लोगों की ओर से उसके बचाव से बच नहीं पाओगे। न्यायिक अर्थ में तथा निष्पक्षता के अर्थ में न्याय पद 15 और 16 का केंद्र बिंदु है। मैं इस बात पर आश्चर्यचकित हूं कि परमेश्वर किस तरह से एक पैटर्न का अनुसरण करता है जो मूल रूप से निर्गमन 20 और उसके अलग अलग लोगों के लिए उसके पहले औपचारिक अध्यादेशों से शुरू होता है, और फिर कैसे वह धैर्य पूर्वक और प्रेम पूर्वक उन 10 बुनियादी आज्ञाओं का विस्तार और निर्माण करके एक और अधिक परिभाषित तस्वीर को चित्रित करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर प्राथमिक रंगों 10 आज्ञाओं को सिखाने से शुरू करता है और फिर रंग और टोन शेष 603 नियम के बारे में सिखाना शुरू करता है। वह कुछ शब्दों में सबसे बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करता है और फिर धीरे धीरे समय के साथ एक ऐसी गति से जिसे मनुष्य आत्मसात कर सके, वह उनके अनुप्रयोग और अर्थ की बारीकियों और गहरी समझ का परिचय देता है। पहले तो ये नियम ज्यादातर सरल मानवीय व्यवहार की सूची की तरह लगते हैं, यांत्रिक और भौतिक सांसारिक वास्तविकता में बंद। बाद में लोगों को मूल बातें सिखाए जाने के बाद यहोवा उन पहलुओं को जोड़ना शुरू करता है जो अपरिचित, यहां तक कि अजीब लगते हैं, जैसे कि शुद्ध और अशुद्ध के नियम, जिनका वास्तव में मनुष्यों के बीच निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बातें जो हमें यह समझाती हैं कि इन कानूनों और आदेशों में कुछ ऐसा है
जो जैविक जीवन और मानव संस्कृति और नागरिक संरचना से कहीं आगे तक फैला हुआ है। अंततः 13 शताब्दियों के बाद यीशुआ यह समझाने के लिए आता है कि तोरह और इसके सभी अध्यादेश और अनुष्ठान आने वाले संसार का पूर्वाभास हैं, और कानून में निहित सभी सिद्धांतों में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक घटक था जो अपराध और दंड को जन्म देने वाली एक जटिल कानूनी प्रणाली की तुलना में बहुत गहरे अर्थ से भरा था।
ईश्वर का यह निर्देश कि अनुचित निर्णय न दिया जाए एक सरल बात लगती है। यहोवा और क्या कह सकता है कि मनुष्य को अनुचित निर्णय देने चाहिए? वास्तव में आइए याद रखें कि यहां जो हो रहा है वह यह है कि ईश्वर अधिकांश मामलों में इज़राइल को उसका अनुकरण करना सिखा रहा है। ईश्वर पवित्र है और इसलिए वह इज़राइल को सिखा रहा है कि पवित्रता क्या है और पवित्र व्यवहार कैसा दिखता है। यहोवा कहता है कि गरीबों के प्रति विशेष पक्षपात न करें और न ही अमीरों के प्रति विशेष सम्मान दिखाएं। न्याय न्याय संगत नहीं है यदि किसी को विशेष व्यवहार मिलता है और दूसरे को नहीं। यह हमेशा मनुष्य के लिए जीने का एक आसान आदर्श नहीं होता है। कुछ समाजों में, विशेष रूप से कुलीन प्रकृति के, यह बिना किसी सवाल के है कि अमीरों के साथ गरीबों से अलग व्यवहार किया जाता है, क्योंकि गरीब अमीरों की सेवा करने के लिए होते हैं। इसे दोनों वर्गों द्वारा इस तरह से समझा जाता है, अमीरों की तुलना में गरीब चीजों की भव्य योजना में कम महत्वपूर्ण है। जितना कि अमेरिका में यह हमें परेशान करता है, हमने हाल ही में गरीबों के प्रति अनुचित पक्षपात करके पैमाने के दूसरे छोर का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति देखी है। हिप्पी आंदोलन के दौर की शुरुआत में न्यायाधीशों ने हमारे आपराधिक कानूनों में सामाजिक और सामुदायिक अपराध के सिद्धांत को शामिल करना शुरू कर दिया, यानी अक्सर समाज के लोग ही अपराधी की तुलना में अधिक दोषी होते हैं और आम तौर पर उस सामाजिक दोष का आधार अपराधी की गरीबी और अशिक्षा या टूटा हुआ घर होता था। दूसरे शब्दों में, कुछ मामलों में न्यायाधीश किसी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति को उसकी सजा निर्धारित करते समय एक कारक के रूप में गिनते थे और कभी कभी तो उसके दोषी या निर्दोष होने का निर्धारण करते समय भी। हमें बताया जाता है कि जिसे हमारा राष्ट्र गरीब मानता है उसे कभी कभी सही काम करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम होनी चाहिए और जो उसने गलत किया उसके लिए उसे कम सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वे गरीब हैं और इसलिए नुकसान में हैं। एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पास अपने कार्यों के लिए कम बहाने होते हैं क्योंकि वह गरीब नहीं है, फिर भी न्याय पाने में उसकी अपनी समस्याएं होती हैं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कानूनी सलाह तक उसके साधन सीमित होते हैं। एक अमीर व्यक्ति के पास निपटने के लिए समस्याओं का एक अलग सेट होता है। उनके अधिकांश अपराधों को सफेद पोश कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे आपराधिकता की तुलना में नैतिकता में चूक के बारे में अधिक हैं हमारी कानूनी प्रणाली के अनुसार, और इसलिए न्याय अक्सर गलत लाभ के लिए किया गया धन को वापस करने के बारे में अधिक होता है, ना कि उस धन को लेने के परिणाम स्वरूप लंबे समय के लिए अपनी स्वतंत्रता खोने के बारे में। मुद्दा यह है कि जब कोई व्यक्ति या राष्ट्र अमीर और गरीब या वर्ग की स्थिति के आधार पर न्याय करना शुरू करता है तो ईश्वर की परिभाषा के अनुसार न्याय नहीं होता है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि ईश्वर निश्चित रूप से अपने नियमों के माध्यम से अपने चरित्र को प्रकट कर रहा है। वह प्रकट कर रहा है कि वह कैसे काम करता है और वह गरीबों के प्रति पक्षपात नहीं करता है, न ही अमीरों के प्रति तिरस्कार करता है, न ही इसके विपरीत। उसका न्याय मानव इच्छा के निर्धारण पर आधारित है जो उसने मानव जाति को दी है। पवित्रता के मार्ग पर चलने या बुराई के मार्ग पर चलने का चुनाव करने के उद्देश्य से विशेष रूप से दी गई इच्छाएं, ईश्वर से प्रेम करने या न करने की इच्छा, चाहे किसी के पास बड़ा चेकिंग खाता हो या बिल्कुल भी ना हो, और चाहे वह समुद्र तट पर रहता हो या पुल के नीचे, यह व्यक्ति द्वारा किए गए चुनावों के लिए ईश्वर के न्याय के संबंध में कोई महत्व नहीं रखता है। पद 17 और 18 को पुनः पढ़ें। पद 17 और 18 एक समग्र विचार है, इसीलिए उन्हें एक साथ लिया जाना चाहिए। अब कुछ मुख्य शब्द हैं जिन पर हम गौर करने जा रहे हैं, क्योंकि वे यह परिभाषित करने में मदद करते हैं कि वह भाई कौन है जिससे इसराइल को अपने दिलों में नफरत न करने के लिए कहा गया है, और वह पडीडीडी होसी कौन है जिसे इसराइली को डांटना चाहिए। इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद आमतौर पर श्रठ में भाई के रूप में किया जाता है, या अन्य अनुवादों में साथी देशवासी या रिश्तेदार के रूप में किया जाता है, वह आंख है। और आंख एक बहुत व्यापक और सामान्य शब्द है। यह एक वास्तविक भाई हो सकता है, एक भाई बहन, इसका मतलब परिवार का कोई करीबी सदस्य हो सकता है, इसका मतलब परिवार का कोई दूर का सदस्य हो सकता है, इसका मतलब दोस्त हो सकता है। लेकिन दुर्लभतम मामलों को छोड़कर इब्रानी मबी द्वारा परिभाषित भाई की सबसे बाहरी सीमा एक साथी इसराइली है, चाहे वह इसराइली जन्मजात इब्रानी हो या कोई विदेशी जो इसराइल में शामिल हो गया हो, वह अभी भी एक इसराइली है और एक नाक हो सकता है। मैं स्पष्ट कर दूं, इस विशेष संदर्भ में यह इसराइल राष्ट्र के बाहर किसी को संदर्भित नहीं करेगा। यह किसी भी ईसाई द्वारा किसी भी राष्ट्र या संप्रदाय के किसी अन्य ईसाई को मसीह में भाई के रूप में संदर्भित करने जैसा नहीं है। वही विचार पहली आयत के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि अपने पड़ोसी को डांटें या डांटें। पड़ोसी के लिए इब्रानी शब्द अमित है, और अमित उतना ही व्यापक और सामान्य है जितना आंख। फिर भी जबकि आंख का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसका आपसे कोई नजदीकी या दूर का पारिवारिक रिश्ता है, यहां तक कि इस रिश्ते के एक ही धर्म को साझा करने के कारण भी अमित का मतलब वास्तव में एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है जिसे आप जानते हैं और जिसके साथ आपका कुछ हद तक नियमित संपर्क होता है। आज हम कह सकते हैं कि मित्र या परिचित। पड़ोसी हमारी वर्तमान सोच के हिसाब से थोड़ा दूर की बात है, क्योंकि समकालीन अमेरिका में किसी के बगल में रहना और उसका नाम मुश्किल से जानना, उससे बात करना तो दूर की बात है, काफी सामान्य बात है। ऐसा इजरायली समाज में कभी नहीं होता, न ही आम तौर पर 30 या 40 साल पहले अमेरिकी समाज में होता था। इसलिए जब बाइबल पड़ोसी कहती है तो इसका मतलब है कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं और उसके साथ किसी तरह का नियमित रिश्ता बना चुके हैं।
अब अगर आप मुझसे पूछें तो ये दोनों आयतें वाकई अजीबोगरीब तरीके से लिखी गई हैं। हालांकि आयत 17 का विचार यह है कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से नाराज नहीं होना चाहिए या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जिसे हम जानते हैं, और बस उसे अपने दिल में ही रहने दें और उसे बढ़ने दें। संभवतः उस व्यक्ति को यह न दिखाए कि आप उससे नाराज हैं। इसके बजाय आयत 17 के दूसरे भाग में यहोवा कहता है उनका सामना करें, उन्हें ईमानदारी से और संभवतः शालीनता और प्रेम से, और न तो क्रोध और न ही झूठी मिठास के साथ उस चीज के बारे में बताएं जो जो समस्या का कारण बन रही है। आयत 18 में आगे कहा गया है कि परिणाम चाहे जो भी हो, आपको न तो बदला लेना चाहिए और न ही उस व्यक्ति के खिलाफ अपने दिल में कर वाहट बढ़ने दें। इसके बजाय हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए।
ओह, माना जाता है कि नए नियम में एक और अवधारणा का आविष्कार किया गया है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। वास्तव में यह तोरह का एक आदेश है जो लेव्य व्यवस्था में इसराइल को दिया गया है। वास्तव में 13 शताब्दियों बाद जब यीशु ने इसी तोरह आदेश को दोहराया तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह व्यवस्था का एक प्राचीन आदेश है, तोरह। मत्ती 22:37, और उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। 38, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। 39, उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। 40, ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है।
और आपको यह दिखाने के लिए कि यहूदी आम तौर पर इस पर विश्वास करते थे, हम रब्बी अकीबा के लेखन में पाते हैं जो यीशुआ के लगभग उसी समय रहते थे। लेव्य व्यवस्था 19 पर उनकी टिप्पणी के अनुसार अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, यही तोरह का केंद्रीय सिद्धांत है। प्रेम का यह आदर्श जिसका यीशु समर्थन कर रहे थे, उस समय की मुख्य धारा की
यहूदी सोच थी और अभिलेखों से पता चलता है कि सदियों पहले भी ऐसा ही था।
पद 19 कहता है, पद 19 को पुनः पढ़ें।
हम रुक कर पद 19 में निर्धारित नियमों के इस अजीब और अस्पष्ट सेट में निहित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की जांच करने जा रहे हैं, और यह सिद्धांत एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है जिसे हमने कुछ सप्ताह पहले सीखा था, तेवेल, जिसका अर्थ है भ्रम, और अक्सर इसका अनुवाद विकृति के रूप में भी किया जाता है।
हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि पद 19 की आज्ञा काफी शाब्दिक है। इसका निश्चित रूप से अर्थ है कि जो कुछ भी मिश्रित न होने के रूप में वर्णित है उसे मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। यह इस बात से शुरू होता है कि बेहमाह को आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बेहमाह का अवसर केवल जानवरों या मवेशियों या जानवरों के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन बेहमाह वास्तव में पालतू खेत जानवरों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है, भेड़, बकरी या मवेशी। ये गधे या यहां तक कि ऊंटों को भी संदर्भित कर सकता है, हालांकि बहुत बाद की तारीख में। तो विचार यह है कि गाय को गधे के साथ या भेड़ को बकरी के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर ऐसा संभव भी हो, फिर हमें एक ही समय में एक ही खेत में दो अलग अलग फसलें न लगाने की नसीहत मिलती है। ऐसा करने का सबसे आम प्रलोभन अंगूर की बेलों के बीच बरी खाली पंक्तियों में अनाज की फसल बोना होता, और अंत में दो अलग अलग प्रकार के धागे को कपड़े में बुनकर वस्त्र नहीं बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए लिनन और ऊन मेरे हिसाब से मिश्रित नहीं है।
लेकिन इस आदेश के पीछे क्या है? अंगूर की बेलों के नीचे जौ बोने से क्या नुकसान हो सकता है? या गाय और भैंस का संकरीकरण करके एक ऐसा पशु तैयार करना जिसका मांस बहुत दुबला हो, बीफलो? रेशम और कपास के मिश्रण का उपयोग करके ऐसा कपड़ा बनाने में क्या बुराई है जो ठंडा होने के साथ साथ टिकाऊ भी हो? जैसा कि मैंने कहा कि इन आदेशों को पूरी तरह से शाब्दिक रूप से समझा गया था, और इसीलिए वास्तव में कानून के रूप में उनका पालन किया गया था। फिर भी इब्रानी ऋषियों ने यह भी समझा कि यहां कुछ बहुत बड़ा और गहरा काम कर रहा था। संक्षेप में जो हो रहा है वह यह है कि परमेश्वर सीमाएं निर्धारित कर रहा है। सीमाएं परमेश्वर की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली और मौलिक शासकीय गतिशीलता में से एक का परिणाम है, और वह यह है कि यहोवा पवित्र को अपवित्र से और शुद्ध को अशुद्ध से विभाजित करता है, चुनता है और अलग करता है।
मनुष्य के लिए सीमाएं स्थापित करना कठिन है और उन्हें बनाए रखना तो और भी कठिन है। परमेश्वर की संतान होने के नाते यहोवा ने हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आज्ञा दी है, और साथ ही साथ वैयक्तिकता को भी पहचानने की आज्ञा दी है, या बेहतर कहें तो भेद, जिसे परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि में निर्धारित किया है। अच्छाई और बुराई के बीच, शुद्ध और अशुद्ध के बीच, पवित्र और अपवित्र के बीच, तथा उसके लोगों और बाकी सभी के बीच।
अब मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि लैव्य व्यवस्था 19 का 19 स्पष्टतः विभाजन, चुनाव और पृथककरण के बारे में है। यह भेद और सीमाएं स्थापित करने के बारे में भी है।
क्योंकि यहोवा ही यह भेद करता है और उचित सीमाएं निर्धारित करता है, इसलिए मनुष्य की स्वाभाविक दुष्ट प्रवृत्ति भेदों को धुंधला करने और सीमाओं को नष्ट करने की कोशिश करना है। हम इसे आज एक ऐसी दुनिया में बहुत प्रचलित रूप में देखते हैं जो बहुसंस्कृतिवाद, सहिष्णुता, उन्मुक्त विविधता, नैतिक सापेक्षवाद और ईश्वर की सीमाओं को चुनौती देने वाली नवीनतम चुनौती समलैंगिक विवाह की पूजा करती है। मसीह के शरीर के भीतर तथा कथित अंतरधार्मिक आंदोलन जोर पकड़ रहा है, एक ऐसा आंदोलन जो सभी प्रकार के अध्यात्मवाद को अच्छी चीजों के बराबर मानता है और यह कहना चाहता है कि सभी पूजे जाने वाले देवता एक ही ईश्वर हैं। वे सिखाते हैं कि स्वर्ग के कई द्वार हैं और मसीहा केवल एक है।
मैं विषय से भटकना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके सहज स्तर को थोड़ा सा ठेस पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि क्यों और कैसे यह सब भेदभावों का धुंधलापन और सीमाओं का मिटना हो रहा है? मेरे विचार में मनुष्य की अपनी स्वाभाविक बुरी प्रवृत्ति के बाद इसका प्राथमिक कारण आधुनिक चर्च के सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत जो कहते हैं कि ईश्वर के नियम, जहां ये सभी भेद स्पष्ट रूप से बताए गए हैं और सीमाएं वर्णित हैं, अप्रचलित माने जाते हैं।
ऐसे सिद्धांत जो कहते हैं कि तोरा बाइबल में एकमात्र स्थान जहां हमारे लिए पवित्रता स्पष्ट रूप से बताई गई है, हमारी बाइबल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आधुनिक मानव के पाचन तंत्र के लिए परिशिष्ट। आप जानते हैं, हर मनुष्य के पास एक परिशिष्ट होता है जो पहले कुछ उपयोगी काम करता था, लेकिन आज यह केवल परेशानी ही पैदा कर सकता है। मूल रूप से चर्च तोरह और पुराने नियम को इसी तरह देखता है, एक पुराने युग का अवशेष जो आधुनिक विश्वासियों के लिए परेशानी पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करता। और कई चर्च के सिद्धांत कहते हैं कि यीशु के आगमन के साथ ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अप्रचलित हो गया है। वास्तव में बहुत अधिक आज्ञाकारी होना उस भयानक कानूनी और काम करने वाली मानसिकता के बराबर है जिसके बारे में हम सभी ने बहुत प्रचार सुना है।
अगर कोई यह मानता है कि बाइबल मत्ती की किताब से शुरू होती है, तो वह उन सभी अंतर्निहित सिद्धांतों को हटा देता है जिन पर यीशु ने अपनी शिक्षाएं आधारित की थी। मुद्दा यह है, चर्च से तोरह को हटाने से ही गलत मानव निर्मित सिद्धांतों को बढ़ावा मिला है जिन्होंने हमारे सत्य के स्रोत के रूप में पवित्र शास्त्र की जगह ले ली है। इसने कई ईसाइयों को यीशु के ईश्वरत्व को नकारने या दावा करने के लिए प्रेरित किया है कि चर्च को ईश्वर की सभी आशीषें विरासत में मिली हैं और यहूदियों को सभी श्राप दिए गए हैं और मसीह के शरीर और दुनिया के बीच की सीमाओं को खत्म कर दिया है और उन्हीं चीजों को अच्छा घोषित करना जिन्हें ईश्वर बुरा कहता है।
दूसरे शब्दों में, जो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वह एजरा की पुस्तक से मत्ती की ओर बढ़ते ही बदल गया। हम अगले सप्ताह उन चीजों के अनुचित मिश्रण की जांच करेंगे जिनके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि उन्हें विभाजित किया जाना चाहिए और उनके बीच एक अवरोध खड़ा किया जाना चाहिए, तथा यह जो भ्रम पैदा करता है उसकी भी जांच करेंगे।